साथ रहेगा 8-9 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे, तो बहुत कुछ बातें भी होंगी, कुछ मुलाकातें होंगी और आपकी फरमाइशें भी होंगी, और इसके साथ साथ ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा। तो चलिए आपको एक इन्फॉर्मेशन की तरफ लेके चलते हैं। ये प्रोग्राम मेगा मनी एक्सचेंज की तरफ से हमें तावुन दिया गया है। मेगा मनी एक्सचेंज जो कहते हैं कि आपने पैसे भिजवाने हों, मंगवाने हों, तो आप इनकी सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बहुत ही भरोसेमंद नाम है मेगा मनी एक्सचेंज का। सबाहत साहब यहाँ पर मौजूद होते हैं, साजो आवाज़ का आपने हवाला देना है, या फिर अगर जैसे अपने कोई गिफ्ट भी भिजवाना है तो आप वो भी उनसे रब्ता कर लीजिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये कि आप अपना बात कर लीजिए, फ्लावर भिजवाने हों, मिठाई या कोई गिफ्ट वगैरह, तो वो सारा काम भी करते हैं। और ये फ्राइडे और सैटरडे बंद होते हैं, और आज आपने इनको कॉल करना है तो 9052794754 पर आप रब्ता कर सकते हैं। 9052794754 मेगा मनी एक्सचेंज का नंबर है। अगर आपने कैश ड्रॉप ऑफ करना है इनके ऑफिस में, जिनका ऑफिस मिसिसागा में है, तो आज का आपका रेट, ये एक रिवाइज रेट है जो कि आज थर्ड टाइम मुझे ईमेल मिली है, और ये जो इसमें जो रेट है वो 114.50 रुपये। जी हाँ, आज का जो रेट है अगर आप पैसे भिजवाते हैं तो 114.50 रुपये पे आप मेगा मनी एक्सचेंज की सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। साजो आवाज का आपने हवाला देना है तो आपको डेफिनेटली जरूर केयर किया जाएगा। 9052794754 पर आप रब्ता कर सकते हैं। एक जबरदस्त प्रोग्राम आ रहा है हमारे शहर में, ये भी जैसे आज का प्रोग्राम हवेली ग्रिल में हो रहा है। अभी हवेली ग्रिल का खाना बहुत मजे का है, तो आप जरूर जाइएगा। वहां पर बफे स्टाइल में खाना होता है कि ये खाएं, वो खाएं, वो खाएं, बस खाते ही जाएं। तो हवेली ग्रिल के ऊपर ये एक जबरदस्त मेगा ईद डिनर हो रहा है। ईद अभी तक मनाई है और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान की मशहूर नूरा लाल भी आ रही हैं, दीपक किरण खान आ रही हैं, और साथ साथ मजहर राही हुसैन भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो एक यादगार इवनिंग होगी जहाँ पर आप साथ साथ ईद डिनर होगा, मेगा ईद डिनर होगा, और इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होगी। ये जो आने वाला अब फ्राइडे है, जून की 21 तारीख को 6:30 बजे से लेके ऑनवर्ड्स ये रंगारंग प्रोग्राम होगा एंटरटेनमेंट का हवेली ग्रिल के ऊपर। आपने इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आपके जाने पहचाने हमारे जो लियाकत चौधरी हैं वो इस प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं, आप रब्ता कर सकते हैं उनसे टिकट की परचेज के लिए। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो लियाकत चौधरी का नंबर है 416-910-2355, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और पहले आपको ज़रा इवेंट्स के बारे में बता दें ताकि आप नोट कर लीजिए भी कहाँ कहाँ जाना है। जाना सब पे हैं। अब ये बोट क्रूज़ आ रहा है, बोट क्रूज़। क्रूज़ का नाम सुनते ही वैसे ही एक्साइटमेंट इतनी हो जाती है कि भाई आप आराम से बैठ जाइए, क्रूज़ पे बैठ जाइए। क्रूज़ गाड़ी का भी अच्छा होता है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, ना आपको ब्रेक लगानी है, ना आपको क्लच दबाना है, गाड़ी खुद ब खुद चलती है। तो इसी तरह जब आप क्रूज़ पे बैठ जाएंगे, और ये जो क्रूज़ होगा ये कैनेडा डे पर होगा, तो बस अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, आप फन एंड डिनर कैनेडा डे इन्जॉय कीजिए। साथ साथ वहां पर आप कनाडा की स्काईलाइन को देखिएगा, लेक ओंटारियो में घूमेगा ये क्रूज, और हमेशा की तरह इसको लेकर आते हैं अयूब सिप्रा जी, और एक से एक अच्छा इवेंट करवाते हैं। आप सभी जानते होंगे अयूब सिप्रा को। तो ये जो इवेंट है ये जुलाई की 1 तारीख को होगा, मंडे का दिन होगा, July 1 को। अब थोड़े ही दिन रह गए, आज 17 होगी, तो अगर आपने इस क्रूज में जाना है अपने दोस्तों के साथ जाइएगा, क्योंकि जब सब साथ होते हैं तो फिर और इंसान इंजॉय करता है। और 1 जुलाई आप कैनेडा डे मनाइए, बोट क्रूज पे जाइए, और अयूब सिप्रा का नंबर आपको दे देते हैं। और इसकी टिकट्स जो हैं ये डिफरेंट हमारे शहरों में हैं, आपको मार्कम में मिल जाएगी, टोरंटो में, थॉर्नक्लिफ में, मिसिसागा में, स्काब्रो में, पिकरिंग में। तो आप उनको कॉल करके पूछ लें कि भाई कौन सी लोकेशन है जहां पर हम पहुंचें और इस बोट क्रूज की टिकट वहां से ले सकते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्रूज़ है यहाँ पर, इसमें जो बैठने की कैपेसिटी है वो 200 है, और फिर ज़ाहिर है जो लोग खड़े होंगे तो बेहतर है कि अपनी सीटों को पहले ही बुक करा लीजिए। आप कैनेडा डे मनाइए इस बोट क्रूज़ में, और आप फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि सीटिंग जो है वो बहुत लिमिटेड है। आप रब्ता कर लीजिएगा अयूब सिप्रा से 416-577-0055 पर आप रब्ता करके आप टिकट, या अगर आपने यहाँ पर एडवर्टाइज़ या फिर आपने स्पॉन्सर करना है, तो इस बोट क्रूज़ जो कि कनाडा आने वाला जो कनाडा डे है, आप जाके आप लेक ओंटारियो में आप इस बोट क्रूज का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए इन तमाम किताबों से आपको लेके चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत, और उसके बाद फिर आपको लेके चलेंगे इंडिया और बहुत कुछ है प्रोग्राम में। जुड़े रहिएगा 770 AM से। हमारा सुनने का नंबर है 4166201778 अगर आपने कोई कॉल करनी है, और अगर आपने लाइव प्रोग्राम को सुनना है तो 6475571017 पर आप सुन सकते हैं। एक फरमाइश आई थी फरीहा परवेज की आवाज में, पतंग बाज सजना तो दिल हुआ बो काटा। चलते हैं सुनते हैं फरीहा परवेज की आवाज में दिल हुआ बो काटा।
Yeah. रन करना मुश्किल है। सो प्रिंटर की प्रॉब्लम से इसे और मुश्किल क्यों बनाए। फास्टर और स्मार्टर प्रिंट करें अपने नए HP ऑफिस जेट प्रो प्रिंटर के साथ और सब्सक्राइब करें HP इंस्टेंट इंक, कनाडा का ओनली इंक सब्सक्रिप्शन सर्विस जो इंक आपके घर पहुंचाए खत्म होने से पहले। आज ही खरीदें न्यू HP ऑफिस जेट प्रो प्रिंटर और सब्सक्राइब करें HP इंस्टेंट इंक स्टार्टिंग एट $399 a month। विजिट hp.ca या अपने नजदीकी HP रिटेलर।
Entertainment and Trans 99 Logistics proudly present
The Road Tour Diljit Dosanjh
Co-presented by Trans Expert and Sarai Trucking
On Saturday, June 22nd at First Ontario Center, Hamilton
In association with T. Media House, Road Link Express and Friends Furniture
Tickets are available at Friends Video or Ticketmaster.ca
For tickets and sponsorship, call 905-793-1234
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
सेल 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 विनायक फर्नीचर मिसिसागा लोकेशन कहां 2915 अर्जेंटिया रोड इन मिसिसागा वेस्टर्न चर्चिल अर्जेंटिया मेजर इंटरसेक्शन। अपनी कम्युनिटी का 15 साल पुराना स्टोर जहां पर बेडरूम सेट मिलता है $499, कॉफी टेबल $199, मैट्रेस $99 ओनली। फर्नीचर से रिलेटेड कोई जरूरत हो पहुंचिए 2915 अर्जेंटिया रोड इन मिसिसागा। फोन नंबर 905-858-2667।
Walk-in Homeopath Clinic in Brampton, one of the highly experienced in North America, KD Homeopathy. Homeopathy mein 40 saal se zyada ka experience inko hasil hai. Kuldeep Singh, specialized in all acute and chronic diseases of men, women and children. Registered homeopath with College of Homeopath Canada. Anxiety, depression se lekar sleep disturbance, thyroid, migraine, menopause, hair loss, weight gain or weight loss, asthma, epilepsy, arthritis, acne or high blood pressure, sab ka ilaaj unke paas maujood hai. He's serving humanity since 1979. Open 7 days a week. Call Kuldeep Singh 647-818-0055, 20 Maritime Ontario Boulevard, Unit Number 2, Brampton.
कंप्लीट होम फर्नीचर अप्लायंसेस की शानदार ग्रैंड ओपनिंग के बाद अभी भी उनके नो टैक्स इवेंट का फायदा उठा सकते हैं। घर के तमाम फर्नीचर और अप्लायंसेस के लिए लेटेस्ट स्टाइल्स, कलर्स, फैब्रिक और मटेरियल्स, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कंटेम्पररी फर्नीचर। तो याद रहे एक ही नाम, कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस। और हाँ, आपके घर की मुनासिबत से फर्नीचर की खरीदारी में नो कॉस्ट, फ्री एडवाइस। तो आइए 547 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट इन ब्रैम्पटन 905-244-6633-905-244-4463।
शाहीन टिक्का एंड कबाब, होम ऑफ हलाल पाकिस्तानी कजीन, बेहतरीन लजीज जायकेदार खाना, सातों दिन खुलता है, फ्री डिलीवरी, केटरिंग अप टू 5,000 लोगों के लिए, लॉरी स्टाइल के खाने खाने के लिए, और रमजान के मौके में अल्हम्दुलिल्लाह अफतारी का खास इंतजाम। खजूरें हैं, 3 तरह की जूसेज है, रूह अफजा है और साथ में फ्रूट चाट, दही बड़े, पकौड़े, समोसे। इसके बाद खाइए मजेदार स्वीडिश। 15 आइटम्स पर मुश्तमिल बफे का इंतजाम, $15.99 every day, 7 days a week, Shaheen Tikka and Kebab, 416-696-7535, 416-696-7535, Shaheen Tikka and Kebab.
जी सुन रहे हैं प्रोग्राम साजो आवाज। आज मंडे की है 17 जून, जून की है आज 17 तारीख, मंडे का दिन, और सुन रहे हैं आप प्रोग्राम साजो आवाज। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम ब्रेक के बाद लेके चलेंगे आपको ऑल द वे इंडिया, इंडिया की क्या खबरें हैं, कल हुई इंडिया की जीत क्रिकेट में, उसकी भी खबरें आपको सारी शविंदर लेकर आए हैं, आपके साथ हम शेयर करते हैं, और बाकी भी जो न्यूज है वो भी आपके साथ साथ शविंदर आप तक पहुंचा देंगे। तो सबसे पहले उनको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। जी शविंदर जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल ठीक ठाक
जी? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तमाम सज्जनों नूं सलाम, सत श्री अकाल ते नमस्ते। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਫਿਫੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤੂ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤੂ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੜ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੜਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੈ
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੋਰਟਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਦੋਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਜਮਾਮ ਉਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਖਿਲਾੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਸਕੋ ਓਵਰਆਲ ਖੇਲਾ, ਤੋ ਯੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਸਿੱਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲਾ ਹੋਗਾ, ਤੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਖੇਲ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋ ਇਸਕੋ ਅੱਛੇ ਉਸ ਪੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ।
ਨਹੀਂ, ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੱਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੇ ਛੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਲੋਚੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ
ਵੀ ਜੋ ਅੱਛਾ ਖੇਲੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅੱਛਾ ਖੇਲੇਗੀ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਦਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਕੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਦਿਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਨਾਥ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਟੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੂਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਥੋ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣੇ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੈਡ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਉਸ ਬਾਤ ਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਡ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਤੇ ਔਰ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ?
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਲਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆ ਗਰੀਸ਼ ਕਰਨਾਡ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗਰੀਸ਼ ਕਰਨਾਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖੀ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਮਨ ਆ, ਉਹ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਬਣੀ ਆ, ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਬਣੀ ਆ 2019 ਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਨੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 93 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਜੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਖਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਇਟ ਲਾਈਕ ਸਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 143 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਹੀ ਖਬਰ ਹੈ?
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 93 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 93 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਕੜਾ 100 ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੰਨੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਕੰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ?
ਮੈਂ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਣਾਉਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸੀਆ ਤੰਤਰ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਗਰੀਬ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੋ ਆਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ
ਜੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਾਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ
ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ? ਹੈਲੋ,
ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ?
ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਰਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤੀਸਰਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮੈਚ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਖੁਦਾ
ਲਿਬਾਸ,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸਰਬਤ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹੀ ਫਿੱਟ ਲਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ, ਕਬੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਖੇਡ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਪਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸੂਬੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ।
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 4166201778 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਹੈਲੋ
ਹੈਲੋ
ਹੈਲੋ ਯਾਰ।
ਹਾਂਜੀ
ਦੇਲ ਮੁੰਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ
ਮੈਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਕਾਲ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸ਼ਵਿੰਦਰ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਵਰ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾਈਏ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15,324 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਇਕ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਆ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਲੇ ਨਸੀਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਤਰਸੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਰੇਗਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀ ਕੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬਠੋੜੀਆਂ ਕਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸ ਨਾਲ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ 381 ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, 92 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰਬਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ
ਔਰ ਅਸੀਂ
ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ
ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੈੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਵਿੰਦਰ, ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕਰ ਆਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਮੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਕੋ ਤੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਥੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਕਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪ ਤੱਕ ਲੇਕਰ ਆਤਾ ਹੈ ਸਵਾਗਤ ਬੈਂਕਵਟ ਹਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਬੈਂਕਵਟ ਹਾਲ ਜਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕਰਾਨੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਇਵੈਂਟ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਜੋ ਕਿ ਅਭੀ ਪਿਛਲੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਮਿੰਗ 2000 ਜਬ 19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਆ ਤੋ ਇਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਹ ਜੋ ਨਿਊ ਈਅਰ ਥਾ ਤਬ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਆ, ਇਟਸ ਅ ਹਿੱਟ ਜੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਿਸ ਆਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਸੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਚਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਪਕੀ ਟੇਬਲ ਪੇ ਆਤੀ ਹੈ, ਚਨੇ ਹੋਂਗੇ, ਆਲੂ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਹਲਵਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਵੀ ਆਪ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਸਵਾਗਤ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਹਾਂ ਪਰ ਆਪ 300 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੋਟਸ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪਰ 50 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਾ ਇਹਤਮਾਮ ਵੀ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਬਫੇ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤੋ 10 ਵਜੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਇਨਕਾ ਬਫੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ, ਚਨੇ, ਆਲੂ ਕੀ ਕਰੀ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਯਹ ਸਬ ਕਾ ਸਬ ਆਪਕੋ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂ ਇਸਮੇ ਚਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮ ਬੱਚੇ ਉਨਕੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਔਰ ਯਹ ਸਾਰਾ ਕਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ 999 ਮੇਂ। ਤੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। खाते जाएं 999 में ही स्वागत बैंक्वेट हॉल। प्रदीप जी को मैं बता रही थी और हम दोनों के मुंह में पानी आ गया, तो प्रदीप जी चलेंगे फिर सैटरडे हलवा पूरी का नाश्ता करने चलेंगे। स्वागत बैंक्वेट हॉल जो जो आपको मिलेगा मिल क्रीक और डेरी पे मिसिसागा में 6991 मिल क्रीक इन मिसिसागा 9058219688 9058219688 पर आप रابطہ कर सकते हैं। तो चले एक स्वागत बैंक्वेट हॉल की तरफ से एक खूबसूरत गीत इस वक्त हमने लाइनअप किया हुआ है वो सुनते हैं और उसके बाद फिर हम आपको एक इंटरव्यू की तरफ लेके चलेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इंश्योरेंस से मुतालिक हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे।
हेलो हिंदुस्तान का देगा तू? हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ
मेरे पिया ओ मेरे पिया दे रंगून पिया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है मेरे पिया दे रंगून पिया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है
हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए बहुत पछताए हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए बहुत पछताए हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून तुम्हारी याद सताती है तुम्हारी याद सताती है दिया में आग लगाती है
मेरे पिया के रंगून पिया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है तुम्हारी याद सताती है दिया में आग लगाती है
आज लूंगी बांध के करें गुजारा भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है तुम्हारी याद सताती है दिया में आग लगाती है
मेरे पिया के
food and
and top-notch service. Best Aleem in Toronto. Lazeez Biryani. Ye hai Mrs. Saga ke Master Biryani and Grill. Inke menu mein hai shamil biryani, haleem, pie, nihari, chicken tikka, kebab and fresh naans. Also special halwa puri served on Saturdays. All reasonably priced at 2580 Shepherd Avenue, Mississauga, Newen Centre. Call at 905-276-0666. 905-276-0666.
एशियन फूड सेंटर 905-793-1338 आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोसरीज एंड स्टेफल्स ब्रेड डेयरी एंड एग बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी ब्रांडेड फूड्स पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड स्वीट्स एंड समोसास ऑर्डर नाउ फॉर इन स्टोर फ्री पिकअप 905-793-1338 एशियन फूड सेंटर एशियन फूड सेंटर
हफ्ते के सातों दिन खुलने वाली मैकेनिकल शॉप ब्राइट ऑटो सर्विस कोई भी मेक या कोई भी मॉडल अगर आपकी गाड़ी में खराबी हो जाए तो ले आइए ब्राइट ऑटो सर्विस पर गाड़ी की डिटेलिंग या फिर रस्ट प्रूफिंग सिर्फ और सिर्फ $50 में तशरीफ लाइए ब्राइट ऑटो सर्विस 8 स्ट्रैटन एवेन्यू ब्रैम्पटन एडवांस एंड डिक्सी के कॉर्नर पर 905-790-0019
जी सुन रहे हैं आप प्रोग्राम साजो आवाज 539 हो रहे हैं आज जून की 17 तारीख और आज पंडे का दिन है जी हाँ अभी हम देख रहे थे CP24 और दो लोग ये जो शूटिंग हुई है नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे आज तो एक वो कहते हैं ना कि लोगों का तूफान था एक समुंदर सा था जो कि सारे के सारे डाउनटाउन पहुंचे हुए थे लोग और बहुत सारे जो कंपनीज थी उन्होंने छुट्टी आज दे दी थी बहुत सारे लोग घर के ऊपर थे तो ज्यादातर यंग लोग मैं देख रही थी कि और भी बहुत सारे लेकिन बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं वो वहां पहुंचे हुए थे और एक भगदड़ सी मच गई अचानक ही शूटिंग हुई है लेकिन हमारी पुलिस भी जबरदस्त के फौरन उन लोगों को सस्पेक्ट को पकड़ लिया गया है और जो फायर वेपन्स थे उनको भी काबू कर लिया है तो जो भी आगे लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ हम प्रोग्राम में शेयर भी करते चलेंगे तो चलिए प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं हमारे साथ यहाँ पर ऑल द वे स्टूडियो आते हैं तशरीफ लाते हैं और आज फिर मौका मिल रहा है प्रदीप जी के साथ बैठने का और जब भी प्रदीप जी के साथ बैठते हैं तो बातें वो इतनी अच्छी करते हैं कि बहुत कुछ समझ में आता है और इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है आप तक पहुँचती है तो सबसे पहले तो प्रदीप जी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं वेलकम टू साजो आवाज
थैंक यू वेरी मच सरबत जी और आपके सभी सामीन को मेरा नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टॉक शो
जी प्रदीप जी जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं क्योंकि ये जो स्टेशन है इसको बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं और इस वक्त तो रश टाइम है तो सुन रहे होते हैं थोड़ा सा अपने बारे में आप बता दीजिए अपनी कंपनी के बारे में बता दीजिए
थैंक यू सरबत जी जैसा कि मैं पहले कई बार अर्ज कर चुका हूँ मैं पिछले 20 साल से 1998 ऑनवर्ड से सन लाइफ के साथ लाइफ इंश्योरेंस और रिलेटेड फील्ड में काम कर रहा हूँ हर तरह की फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ सरबत जी और सन लाइफ जैसे कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है कई बार मैं बता चुका हूँ 1865 में शुरू हुई जो कि कनाडा के भी वजूद में आने के 2 साल पहले से एक्टिव है तो इसको 154 साल लगभग पूरे हो गए सन लाइफ कंपनी को और ये जो कंपनी है सरबत जी ये अकेली कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस फील्ड में नॉर्थ अमेरिकन जिसको 100 मोस्ट सस्टेनेबल ग्लोबल कॉरपोरेशन में शुमार किया गया है
क्या बात है
तो कॉमन लैंग्वेज में बहुत तरह के प्लान्स हैं बहुत कॉम्पिटिटिव प्रीमियम्स हैं कस्टमर सर्विस इज एक्सेलेंट एंड क्लेम टाइम इज वेरी वेरी स्मूथ
अच्छा
जो कि क्लेम टाइम वाली बात है ये मुझे सबसे अच्छी और इम्प्रेस करने वाली लगती है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस लेने का मकसद ये होता है कि हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को टाइम से और फौरी तौर पे पैसे क्लेम के मिल जाएं
क्लेम टाइम जी
है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इनके परफॉर्मेंस से
अच्छा तो सन लाइफ से आपका ताल्लुक है आप हमेशा की तरह कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होता है तो आज का प्रदीप जी आज का क्या टॉपिक होगा
आज सरोज जी हम बात करेंगे कि वो क्या गलतियां हैं वो क्या गलतियां हैं जो होती हैं लोगों से जब वो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ मीटिंग रखते हैं तो अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स ड्यूरिंग मीटिंग्स विद लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स, या गलतियां जिसे हम शब्द उर्दू में कह सकते हैं, मीटिंग के तौर दौरान हम क्या गलतियां करते हैं अक्सर करके।
बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि वाकई बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि गलतियां भी हैं। तो आप जैसे वहां पर एज एडवाइजर बैठे होते हैं तो आप देखते होंगे, आपकी एक गहरी नजर होती है। तो ये जो पॉलिसी या जिसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्पेशली, तो जब आप ये पॉलिसी रिव्यू होता क्या है, क्या मतलब
पॉलिसी रिव्यू होता है सरवत जी, कि जब कोई आदमी ने कहीं से भी पॉलिसी ले रखी हो और वो चाहता है कि एक सेकेंड ओपिनियन उसके ऊपर मिल जाए, तो सेकेंड ओपिनियन मिलने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग खासतौर से मेरे पास कॉल करते हैं कि मैंने कहीं से प्लान लिया था 8 साल पहले, 5 साल पहले या 15 साल पहले, और उसको आप देखें, क्योंकि उसको दोबारा कभी खोल के नहीं देखा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने जो एडवाइज़र जिसने मुझे प्लान दिया था उनसे भी रबते में नहीं हूँ, है ना। तो ये होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू, तो वो हम लोग कर देते हैं, क्योंकि हम हर तरह की पॉलिसी से वाकिफ हैं, इतने साल से यही काम दिन रात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आती हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि आपके नाम में गलती है या सही है, या शादी के बाद लेडीज़ का नाम बदल गया, बेनिफिशरीज चेंज हो गए, ट्रस्टीज चेंज हो गए, या बहुत सारे ऑप्शन हमने यूज़ नहीं किए, तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी डिस्कस होती हैं और देखी जाती हैं पॉलिसी रिव्यू में। तो अब क्या होता है सरवत जी, लोग पॉलिसी रिव्यू के लिए मीटिंग तो रखते हैं, लेकिन वो अक्सर करके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाते। वो कहते हैं जी पॉलिसी डॉक्यूमेंट ढूंढने का टाइम नहीं मिला। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिस मकसद के लिए मुलाकात हो रही है वो ही पेपर्स नहीं, तो फिर क्या बात हो सकती है। क्योंकि 99% केसेस में किसी को भी अपने पॉलिसी के फुल डिटेल्स कभी याद नहीं रहते। क्यों नहीं याद रहते? क्योंकि कभी दोबारा खोल के देखा नहीं गया, और ये जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी ये फील्ड भी नहीं है। तो कॉमन मिस्टेक होती है पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिव्यू के टाइम पे कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है।
लेकिन प्रदीप जी, क्या ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास भी रखते हैं एज अ बैकअप?
नहीं, एज अ बैकअप हम कहाँ से रख सकते हैं। अब किसी ने किसी भी कंपनी से प्लान लिया हो तो हमारे पास तो डॉक्यूमेंट होंगे नहीं, वो तो वो खुद अपने डॉक्यूमेंट लाएगा। बल्कि किसी ने सन लाइफ का भी प्लान लिया हो तो अंडर प्राइवेसी वो उनके डॉक्यूमेंट्स हम नहीं देख सकते जब तक कि वो खुद हमें ना दिखाएं। पर जितने क्लाइंट्स मेरे होते हैं उनके पॉलिसी के सबके एसेंस मेरे पास होते हैं, पर वो मेरे और सन लाइफ के क्लाइंट्स हैं। जो दूसरी कंपनी से क्लाइंट्स हैं एक्स वाई जेड कंपनीज के, वो तो उनको तो खुद लेके आने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स।
नहीं, ठीक है। तो प्रदीप जी, जैसे अगर ये जो आप बैठते हैं मीटिंग करते हैं, तो इसमें जो टाइम अलॉटमेंट है इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
क्या होता है इसमें, अक्सर करके हमारे लोग जो हैं बहुत कैजुअल अप्रोच दिखाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर बात हुई कि 12:30 बजे मुलाकात होगी और लगभग 1 घंटा टाइम रखा जाएगा ताकि पॉलिसी को भी डिस्कस किया जाए, और उसके बाद फिर उसमें क्या तजवीज़ की जाए, कैसे उसके ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाए, उनमें कितनी जान है और कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए भी टाइम रखा जाए। लेकिन कई बार क्या होता है सरबत जी, लोग आते हैं और आते के साथ ही डिक्लेयर करते हैं भाई टाइम पहले तो मैंने कहा था 1 घंटे का, लेकिन अब मुझे अपने बच्चे को पिकअप करना है या ग्रॉसरी लानी है या फला फला सिचुएशन आ गई, तो 20-25 मिनट के डिस्कशन के बाद मुझे जाना होगा, है ना।
10 चीजें सर पे होती
हैं। हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपकी मुलाकात होती जरूर है लेकिन उसकी जो अहमियत काफी कम हो जाती है, क्योंकि आप भी समझते हैं भाई कुछ ये आगे सीरियस मामला है नहीं, है ना। जल्दी जल्दी ये करना चाहते हैं और उनका दिमाग कहीं और है। तो जब भी आप किसी एडवाइजर के साथ मीटिंग करें, एक और एक टाइम अपना एक रीजनेबल टाइम अलॉट करें अपने मन में, और फिर उस पर स्टिक करें, ताकि वो एडवाइजर भी जो प्रिपेयर करके आपके लिए लाया है या आपको एक्सप्लेन करने वाला है वो आपको एक्सप्लेन कर सके, आप उसकी बात माने या मत माने ये आपके हाथ की बात है, लेकिन कम से कम आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो डिस्कशन वो बात आप पूरी तरह से सुन सके।
इसका फायदा तो होना मीटिंग का।
जी।
तो प्रदीप जी, जब आप बैठे होते हैं, जब मीटिंग हो रही होती है, तो आपको किस किस्म के इशू आते हैं? आप यानी क्या क्या
सबसे पहला इशू आता है सरवत जी, कि हस्बैंड वाइफ में से अक्सर करके वाइफ नहीं शामिल होती मीटिंग में, कि उनको कहीं जाना पड़ गया या उन्होंने कहा कि भाई आप ही चले जाएं अकेले अपने शौहर से, मैं जाके क्या करूंगी, जो आप कहेंगे फिर मैं कर लूंगी। तो उसमें क्या होता है कि लेडीज़ को, जो साउथ एशियन लेडीज़ हैं, इंडियन और पाकिस्तानी खास तौर पे, उनको बहुत कम इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल अफेयर्स की। कईयों को तो सरबत जी ये भी नहीं पता कि उनके शौहर ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले भी रखी है, और ले रखी है तो किस कंपनी से ले रखी है, कितने अमाउंट की है और कहाँ पे पड़ी हुई है। तो इससे क्या होता है कि जब उनको पता ही नहीं होता और उनके हस्बैंड्स उनको इनकरेज नहीं करते, तो कभी हादसा हो जाए, हादसे का मतलब हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो बहुत सारे क्लेम सरबत जी फाइल नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि लेडीज को, उनकी बीवियों को इस बात का इल्म भी नहीं है कि उनके हस्बैंड ने कोई प्लान लिया था और किस कंपनी से लिया था और किस हिसाब का लिया था। तो इसलिए लेडीज़ को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी इनकम, हार्ड अर्न्ड इनकम का एक हिस्सा कंपनी को दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी फैमिली का मुस्तकबिल महफूज किया जा सके। तो उसको महफूज करने के लिए प्लान ले लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उनको इस बात की मालूमात भी होनी चाहिए कि किस कंपनी के साथ है, हमारा एडवाइज़र कौन है और क्या प्लान है वगैरह वगैरह। इसलिए उनको ज़रूर इन्वॉल्व करें।
नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही की, क्योंकि प्लान लेने का अक्सर मकसद ही यही है कि जो आपके लव्ड वन होते हैं उनको पता हो। तो बहुत अच्छा आपने ये एक पॉइंट सबके लिए रेस किया है। दूसरा, जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि इंश्योरेंस के लिए कौन सी कंपनी हम लें या फिर हम किस एडवाइज़र के साथ बैठें, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे?
ज़्यादातर केसेस में सरबत जी, जो हमारे लोग हैं, उनकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर होती है कि भाई प्रीमियम क्या है, इसमें दो पैसे कम है, ज़्यादा है, क्या है कि नहीं है, क्या है, उस पर उनका डिसीजन बेस होता है। ओनली ऑन वेरी स्मॉल माइनर डिफरेंस इन द प्रीमियम। लेकिन जब भी आप डिसाइड कर रहे होते हैं तो आपको कई मुख्तलिफ किस्म के पहलू और डायमेंशंस देखने चाहिए। पहली बात तो ये कि कंपनी कितनी पुरानी है, उसकी रेपुटेशन क्या है, क्योंकि आप देखें कि 20 साल पहले लगभग 125-130 कंपनीज थी, अब यहाँ 100 से भी कम रह गई हैं। क्यों रह गई? क्योंकि छोटी कंपनियाँ जो हैं वो बहुत मुश्किल आ रही है उनको इस फील्ड में रहने के लिए, इसलिए उनको बड़ी बड़ी कंपनियाँ खरीदती जा रही हैं।
अच्छा,
तो वो छोटी कंपनियां डिसअपीयर हो जाती हैं। फिर उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को सर्विस में प्रॉब्लम आती, क्योंकि उनकी कंपनी के ऑफिसर्स चेंज हो गए, उन पॉलिसीज के नंबर बदल गए, उनके एडवाइजर्स बदल गए, पूरा सिस्टम बदल गया। तो आप पहले देखें कि कंपनी किससे डील कर रहे हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। दूसरी बात आपको देखनी है प्रीमियम्स के अलावा कि उसकी कस्टमर सर्विस कैसी है, उसके जो क्लेम सिस्टम कैसा है, उसका किस तरह से क्लेम करते हैं। फॉर एग्जांपल, सनलाइफ में क्लेम के टाइम पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मांगते।
अच्छा,
क्योंकि 90% घरों में मिलते ही नहीं है, और कई कंपनियां बहुत पर्टिकुलर है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाओ, तो उसमें डिले होती है। सनलाइफ पहले दिन से ही क्लेम के ऊपर इंटरेस्ट देना शुरू कर देता है, तो उसकी जो क्लेम एडजस्टमेंट टीम है सनलाइफ की, वो बहुत जल्दी जल्दी क्लेम्स उलटाना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट देने का मतलब है कंपनी का लॉस, और उनके ऊपर सख्त तनकीद कंपनी की तरफ से कि तुमने डिले क्यों की, हमें इतना हमारा नुकसान हो गया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से एडवाइज़र से आप पूछें, भाई आपका क्या तजर्बा है, आपकी क्या फॉर्मल क्वालिफिकेशन है, आपकी इंश्योरेंस फील्ड में क्या क्वालिफिकेशन है, और आप किस तरह से हमारी हेल्प करेंगे और किस तरह से हमारी आफ्टर सेल हमें सपोर्ट करेंगे।
जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस बहरहाल रिव्यूज वगैरह भी देख लेने चाहिए, चेक करने चाहिए, है ना।
हर अपने क्लाइंट के साथ मैं हर साल दो साल में एक रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि उनकी याद दहानी हो जाए कि उनके पास क्या है। और उससे भी जरूरी यह है कि कोई मिस्टेक्स हो, कुछ करेक्शन करना हो, बेनिफिशियरीज को चेंज करना हो, या फिर कुछ ऑप्शंस एक्सरसाइज करने हो, तो उसका भी एक सफिशिएंट उनके पास एक मौका मिलना चाहिए।
जी, बहुत गहरी नजर रखते हैं और एक लंबा तजर्बा है प्रदीप जी, और प्रदीप जी से आप जरूर राब्ता कीजिएगा। कोई भी जहन में सवाल हो इंश्योरेंस से मुतालिक, लेनी हो इंश्योरेंस, तो प्रदीप जी आप के साथ बैठेंगे। और बैठने का क्या तरीका प्रदीप जी?
बैठने का तरीका, एक कॉल करें और एक टाइम सेट कर लें, उसमें फिर उसके बाद हम लोग टाइम सेट करेंगे, जगह मुकर्रर कर लेंगे कहाँ सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जगह, कौन सा कन्वीनियंट टाइम है। और अगर किसी भाई को नया प्लान चाहिए तो अपने मन में कुछ ये भी सोच लें कि भाई मेरी ज़रूरत क्या है, मेरा बजट क्या है। नहीं तो बहुत लोग सरवत जी बगैर किसी तरह का बजट मन में बनाए, अरे उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसलिए बजट भी सोचें, भाई मेरा बजट तो $50 का है या $100 के अंदर काम होना चाहिए या 200 के अंदर। तो जो भी आपका बजट है एक मन में ज़रूर बना लें, एडवाइज़र को बताएं ताकि एडवाइज़र भी कोशिश करे कि उसमें क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मैं समराइज़ कर दूं कि एक तो जब भी आप मीटिंग तय करें एक उसमें टाइम सेट करें, अपने मन में एक बजट रखें, डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं रिव्यू कराना तो डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके आएं, और अपनी वाइफ को ज़रूर इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। सरवत जी ऐसा मेरा बार बार कह के रिक्वेस्ट करना है लोगों से, इससे आपको उस मीटिंग का भरपूर फायदा होगा, नहीं तो आपको उसका जो है पूरा फायदा नहीं मिलेगा।
जी जी, आपने हमेशा एम्फसाइज किया 4168945872, 4168945872 पे आप रابطہ कर सकते हैं। मैं तो प्रदीप जी आसान लफ्जों में यही समझ सकती हूँ कि वो ना आप एक स्टेशन है और ये एक ट्रेन चल रही है, तो अगर हम स्टेशन पे नहीं रुक के नहीं वो बर वक्त चीजें उठाएंगे तो ट्रेन तो गई,
ट्रेन तो गई, तभी हमारे लोग पीछे ट्रेन के भागते हैं और एडवाइजर कहते हैं भाई तुम सबसे पहले वो चीज मुझे लाके दो जो अब मैं मुझे नहीं मिल सकती,
फिर कहां से लाएं।
हाँ, बहुत सारे मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि मेरे शौहर को पिछले हफ्ते स्ट्रोक हो गया, तो अब आप उनके लिए क्रिटिकल इलनेस का कुछ ला सकते हैं, या वो अब डिसेबल हो गए कोई एक्सीडेंट में घायल हो गए तो उनका डिसेबिलिटी प्लान बन सकता है। तो इस तरह के जो सवाल है उनका तो जवाब भी देने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि ट्रेन उनकी छूट चुकी है। तो टाइम से देखें, और सनलाइफ की कस्टमर सर्विस जैसे मैं कह रहा था, जब तक मैं कंपनी में हूँ मैं आपका एडवाइजर रहूंगा, और अगर मैं कंपनी से रिटायर होता हूँ या छोड़ जाता हूँ या मेरा भी टाइम आ जाता है तो कंपनी आपके लिए कोई नया एडवाइजर खुद ही मुकर्रर करेगी। हर एक के पास कस्टमर सर्विस बरकरार रहेगी विद एन इंडिविजुअल सपोर्टिंग सर्विस एडवाइजर।
प्रदीप जी आखिर में अपना नंबर जरूर हमें एक दफा खुद शेयर कर लीजिए।
416-894-5872, एक बार मैं फिर से धीरे धीरे रिपीट करता हूँ, 416-894-5872। सरवत जी कोई भी भाई बहन मुझे कॉल कर सकता है और बात करने की, मीटिंग की या रिव्यू करने की कोई फीस नहीं है, आपको हम मशवरा देंगे, पर मानना या ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है विदाउट एनी प्रेशर।
जी प्रदीप जी से आपसे आपकी मुलाकात करवाई है 4168945872, और इन्हीं के तावन से हम आपको एक गीत की तरफ लेके चलते हैं। प्रदीप जी हमेशा कोई ना कोई एक मीनिंगफुल सॉन्ग लेकर आते हैं, तो आज का गीत प्रदीप जी क्या है, तो फिर हम उस गीत की तरफ चलते हैं। फिर
बिल्कुल आप गाना लगाइए, पहला वाला जो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस इंडियन वहीदा रहमान साहिबा के ऊपर फिल्माया गया था गाइड पिक्चर से।
जी
अगले मंडे फिर मुलाकात होती है।
थैंक यू सो मच जी।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। से तुम कदर समझ लिया, जो मिल गया उसे को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे